نصیحتیں ہیں ان میں، حکمتیں ہیں ان میں، عبرتیں ہیں ان میں، قرآن کے سچے واقعات۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور بزرگوں، ہمارا پروگرام ہے قرآن کے سچے واقعات۔ آج ہم ایک ایسی گائے کا دلچسپ قرآنی واقعہ سنیں گے کہ جو قیمت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ آپ نے گائیوں کے بارے میں سنا ہوگا، مگر یہ گائے بڑی دلچسپ گائے ہے کہ جس کا واقعہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک گائے ہی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سے گہرے سبق چھپے ہوئے۔ کیونکہ قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات ہیں، ان واقعات کے اندر ہمارے لیے درس ہوتا ہے، ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے کہ صرف واقعہ نہیں ہوتا بلکہ ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ واقعہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک دور کا واقعہ ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک گائے کی کہانی اتنی اہم کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا؟ آج آپ کے سامنے یہ بات بھی ظاہر ہو جائے گی کہ واقعی یہ کیسی گائے تھی کہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے۔ اس قرآنی واقعے سے ہمیں صبر، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ غور سے سنیے گا کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہیں۔ شاید بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جانتے ہوں گے کہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں اور انگلیش میں کاؤ، COW، کاؤ، یعنی گائے کاؤ کو کہتے ہیں۔ گائے والے واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی دوسری سورت کا نام، پہلی سورت سورہ فاتحہ اور دوسری سورت سورہ بقرہ، سب سے قیمتی گائے کون سی ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایسی قیمتی گائے، وہ کون سی گائے ہے؟ دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک بچہ بھی تھا جو کہ ابھی نابالغ تھا، اور ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچی آتی۔ چھوٹا سا بچڑا ہوتا ہے جب لوگ پالتے ہیں اس طریقے سے، ایک چھوٹا سا بچڑا تھا۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب انتقال سے پہلے کچھ سوچا ہوگا کہ میرے بچے کے مستقبل کے لیے کیا، تو انہوں نے اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جاری کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا، یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں، یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے، میرا بچہ بڑا ہو جائے۔ جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا ایک ذریعہ معاش ہو جائے گا، اسی زندگی گزارنے کے لیے ایک ذریعہ ہو جائے گا کہ میرا بچہ اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزار لے گا۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا جو ہے وہ جنگل میں چرتی رہتی تھی، کھاتی رہتی تھی، پانی پیتی رہتی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ وہ بچیا جو ہے یہ بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی۔ وہ درمیانی उम्र की हो गई और बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता जो बड़ा होना शुरू हो गया। जब बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ का फर्मा बरदार भी बन जाता है, नेक बच्चा, क्योंकि वालिद साले थे, नेक थे, परहेजगार थे। क्योंकि हमारे यह होता कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, जैसे वालिद नमाज पढ़ते हैं तो बच्चे को अपने साथ नमाज के लिए लेके जाते हैं, वालिद कुरान पाक पढ़ते तो बच्चे को भी सिपारा थमा देते कि वो भी अली बा पढ़े। तो ये खुद बुजुर्ग थे ना, साले आदमी थे, नेक आदमी थे, तो बच्चे की तरबियत ही वैसी हो गई। जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो ये बच्चा भी अपनी माँ का फर्मा बरदार और नेकूकार हुआ। इसने अपनी पूरी रात को तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। लोग तो पूरी रात सोते रहते हैं ना, मोबाइल देखते रहते हैं, अपनी मसरूफियात में वक्त गुजारते हैं, कोई होटलों में बैठ जाता है, गप्पे लगाता रहता है। रमजान शरीफ का मुबारक महीना होता है, हमारे नौजवान बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू कर देते, जबकि मुबारक महीना है, इबादत का महीना है, अल्लाह को राजी करने का महीना। रमजान का पहला अशरा अशराए रहमत, दूसरा अशरा अशराए मगफिरत, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा। यानी कि इस मुबारक महीने को इबादत में गुजारना चाहिए था, मगर हमारा नौजवान जो है गफलत में गुजार देता। चुनाचे ये बच्चा जैसे ही बालिग हुआ तो इसने अपनी रात को भी तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले हिस्से में अल्लाह पाक की इबादत किया करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत किया करता था और एक हिस्से में आराम किया करता था। और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उनको फरोख करके एक तिहाई रकम सदका करता है। हम तो अपना माल जमा करते हैं, अपना माल बैंकों में रखवाते हैं, अपने माल को छुपा छुपा कर रखते हैं, इस तरीके से अपने माल को बढ़ाने की कोशिश करता है। जहां खर्च करने का मामला आता है, राह खुदा में खर्च करना है, दीनी कामों में खर्च करना है, गरीबों यतीमों मिस्कीनों की मदद के लिए खर्च करना है, उस माल को सदका करना है, उस माल की जकात निकालती है, तो उस वक्त जो है बुखल हो जाती। बंदा जो है अपने माल को बढ़ाने की तो फिक्र करता है, राह खुदा में खर्च करना ये नसीब वालों को मिलता है कि नसीब वाले उसको खिरात भी करते हैं, सदकात भी करते हैं, अपने माल की पूरी जकात भी निकालते हैं। ये बच्चा जब कमा कर लेकर आता था तो एक हिस्सा जो है ये सदका कर देता, एक तिहाई अपनी जात में खर्च करता और एक तिहाई रकम अपनी वालिदा को दे देता। लेकिन माँ की खिदमत का भी जज्बा, राह खुदा में खर्च करने का भी जज्बा और अपनी जात पर भी वो खर्च किया करता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे वालिद ने मीरास में एक बच्चिया छोड़ी थी, गाय की एक छोटी सी बच्चिया छोड़ी थी, जिसको उन्होंने फुला झाड़ी के पास जंगल में अल्लाह पाक की अमानत में दे दिया। अल्लाह अमीन है, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाता है, तो अल्लाह की अमानत में सौंप दिया है। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो, अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करो कि ए इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक के खुदा, तू मेरे वालिद की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस लौटा दे। देखिए बच्चे ने अपनी माँ की बात सुनी, उस झाड़ी में जाकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगी कि या अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के सदके, या अल्लाह जो मेरे वालिद ने यहाँ अमानत तेरी बारगाह में सौंपी थी, परवरदिगार वो मुझे वापस लौटा दे।
लड़के ने उस गाय को किस तरह पहचाना?
आपका सवाल भी अच्छा है कि लड़के ने उस गाय को किस तरह पहचाना। हकीकत है कि लड़के को कैसे पता चला कि ये मेरी गाय है, हो सकता है कि और भी गायें हो वहां पर, तली रंगों वाली गायें हो, तो इस लड़के ने उस गाय को कैसे पकड़ा? उस लड़के की अम्मी जान ने उस बच्चिया की निशानी उसको बता दी थी कि बेटा उसकी अलामत ये है। अलामत में क्या थी कि वो पीले रंग की होगी, गायें तो और भी कलर की होती है, सफेद गाय होती है, काले कलर की गाय होती है, लाल कलर की गाय होती है, ये पीले कलर की गाय थी। उसकी माँ ने बच्चे को बताया कि ये पीले कलर की गाय है और उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी जैसे सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हो। इतनी प्यारी और खूबसूरत गाय। ये सुनकर लड़का जो है वो जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उस जानी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई, क्योंकि अल्लाह की अमानत में जो सौंपा हुआ था, कह कर दिया था कि या अल्लाह जब तक मेरा बच्चा बालिग हो जाए परवरदिगार तू इस गाय की हिफाजत फरमा, मैं तेरी अमान में देता हूँ। अल्लाह पाक ने उसकी अमानत की हिफाजत फरमाई। जब यह बच्चा बड़ा हुआ और माँ के कहने पर उस जानी के पास गया और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी तो ये गाय दौड़ती हुई जंगल से उसके पास आकर खड़ी हो गई। अब क्या हुआ कि बच्चे की माँ ने जब उस गाय को देखा तो उसकी माँ ने ये कहा कि तुम ये गाय बाजार ले जाओ और इसको 3 दिनार में फरोख कर देना। मगर फरोख करने से पहले, ग्राहक को बेचने से पहले मशवरा कर लेना, मशवरे के बगैर ये गाय तुम्हें बेचनी नहीं है, तुम्हें गाय देनी नहीं है। 3 दिनार जो है उस वक्त उस टाइम पे उस दौर में गाय की कीमत गालिबन इतनी ही होगी कि माँ ने कहा था उसको 3 दिनार में जाके बेच देना।
दिनार किसको कहते हैं?
जी अच्छी बात है, आपने सही सवाल किया कि दिनार किसको कहते हैं। सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को दिरहम कहते हैं। पहले जमाने में लोग चीजों के खरीदो फरोख, कोई चीज लेनी थी कोई चीज बेचनी थी, लेने वाला देने वाला जब वो खरीदो फरोख करते थे तो उस वक्त सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे। सोने के सिक्के को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। अब समझ में आ गई आपकी बात है? सिक्के जो सोने के होते थे उसको क्या कहते थे? दीनार। और जो चांदी के होते थे उसको कहते थे दिरहम। अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़का बाजार में गाय बेचने के लिए खड़ा था, क्योंकि लोग बेचते हैं ना गायें। अब बकरा ईद आती है तो जानवर लेके लोग अपने बेचने के लिए निकलते हैं, कोई दुम्बा बेचता है, कोई बकरा बेचता है, कोई क्या बेचता है। तो ये लड़का भी अपनी माँ के कहने पर गाय लेकर बाजार पहुंच गया और खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है कि शायद कोई खरीदार आएगा और मुझसे गाय लेकर चला जाएगा। ग्राहक आया जो दर हकीकत कोई आम आदमी नहीं था, वो आने वाला शख्स कोई आम नहीं था बल्कि आने वाला अल्लाह का फरिश्ता था। कौन था? अल्लाह का फरिश्ता था। और उसने कहा कि मैं ये गाय खरीदना चाहता हूँ। लड़के ने कहा ठीक है मैं बेचना चाहता हूँ। कहा कि क्या कीमत है? कहा कि 3 दिनार है, 3 दिनार में ये गाय मैं बेचना चाहता हूँ। तो इस फरिश्ते ने क्या कहा? बच्चे को तो पता नहीं था कि अल्लाह का फरिश्ता है। जब ये बात हो रही थी तो लड़का कह रहा था कि मैं 3 दिनार में बेचूंगा और जो खरीदने वाला था कहा कि मैं 3 दिनार से ज्यादा दूंगा। कहा कि ठीक है, ज्यादा के बारे में तो मैंने किया था, मगर मैं अपनी वालदा से मेरे मशवरा करूंगा, पहले मैं अपनी वालदा को पूछूंगा मेरी वालदा क्या कहती है। कहा कि नहीं, वालदा से मत पूछो। कहा कि अगर आप इसकी ज्यादा से ज्यादा भी कीमत देंगे तो मैं ये गाय नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि कोई भी ग्राहक आए बेचने से पहले मुझसे मशवरा कर लेना। अब क्या हुआ कि लड़का जो है अपनी वालदा के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद सारा वाकया सुनाया कि खरीदार आया और उसने मुझसे कीमत तलब की कि क्या कीमत में आप बेचोगे। मैंने 3 दिनार कहे। उसने कहा कि मैं 3 दिनार से ज्यादा दूंगा। मैंने कहा कि पहले मैं मशवरा कर लूं। कहा कि नहीं, मशवरा नहीं करना, मैं 3 दिनार से ज्यादा देता हूं। तो माँ समझ गई, माँ समझ गई कि आने वाला खरीदार कोई आम नहीं था बल्कि वो अल्लाह का फरिश्ता था।
क्या वाकई इस गाय को चमड़े में सोना भरकर खरीदा गया था?
आप सही पूछ रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। वाकया क्या था कि गाय को चमड़ा उसमें सोना वो भरकर बेचा गया। ये समझ में आने वाली बात कि गाय के अंदर उसके चमड़े में सोना भरकर बेचा गया, ये कैसे हो सकता है? हुआ यूं कि चंद दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को जिसका नाम था आमील, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया, चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया, जहां सुनसान कोई देखने वाला नहीं था, किसी को पता ना चले, वीराने में डाल दिया। जब खानदान वालों के पास वो नहीं पहुंचा, घर वालों के पास नहीं पहुंचा, तो घर वालों को तश्वीश हुई कि आखिर चला कहां गया, ये अभी तक नहीं आया। उसकी तलाश जारी हो गई कि हमारे घर का आदमी सुबह से गया, रात हो गई, दूसरी रात आ गई, दूसरा दिन आ गया, कहां चला गया। अब तलाश शुरू हो गई, जब लाश मिल गई तो पता नहीं चला था कि इनको कत्ल किसने किया। जब तक कोई शहादत ना मिले, कोई गवाह ना मिले, कोई बताने वाला ना मिले, तो कैसे पता चलेगा। लाश को तो वीराने में फेंक दिया गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इनके घर वाले आए कि पता नहीं इसको किसने कत्ल कर दिया, अब कैसे पता चले कि इनका कातिल कौन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया, उनके खानदान वालों ने फरमाया कि गाय ज़बह कर लो, उसकी जबान या उसकी दुम उस लाश के ऊपर मारो, जब उसमें मारोगे तो लाश जो ना वो बोल पड़ेगी, लाश कहेगी कि मुझे किसने कत्ल किया है। चुनाचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोने की कीमत देकर खरीदा और जबा करके उसकी जबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल पड़ा। अब वो जब बोला तो कहने लगा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं कि जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया। देखिए माल का लालच कितना गंदा है, माल की लालच कितनी बुरी है कि इंसान ये नहीं देखता कि मेरा अजीज है, मेरा रिश्तेदार है, चचा है, ताया है। और ये माशरे में हम सुनते रहते हैं कि ये वाकयात हमारे दरमियान होते रहते हैं कि फुला ने फुला की जायदाद पे कब्जा कर लिया, फुला ने फुला की जमीन पे कब्जा कर लिया, फुला ने फुला के माल पे कब्जा कर लिया। ये माल की मोहब्बत कैसी है कि ये चचा के लड़कों ने अपने भाई को ही कत्ल कर दिया, चचाजाद भाई को कत्ल कर दिया। अब ये लाश बता रही है कि मेरे चचाजाद भाइयों ने मुझे कत्ल कर दिया, ये बताकर फिर वो मर गया। चुनाचे इन दोनों कातिलों को की सांस में कत्ल कर दिया गया, क्योंकि कत्ल का बदला कत्ल है। अब वो कत्ल किया गया था, जिसने जिन्होंने कत्ल किया था शरीयत की रूह से उनको भी कत्ल किया गया। और नेक शख्स का लड़का जो अपनी माँ का फरमा बरदा था, कसीर दौलत से माला माल हो गया, क्योंकि वो जो गाय की खाल थी ना वो सोने में भरकर उसको दी गई थी, क्योंकि माँ की फरमा बरदा रखी थी। इस वाकये को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस मजमून के साथ बयान फरमाया। और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो, बोले कि आप हमें मस्करा बनाते हैं, फरमाया खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हूं, बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे गाय कैसी। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है, ना बूढ़ी और ना ओसर, बल्कि इन दोनों के बीच में, तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले अपने रब से दुआ कीजिए, हमें बता दे कि इसका रंग क्या है। कहा वो फरमाता है वो एक पीली गाय है जिसकी रंगत देखने वाले को खुशी देती है। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान करे कि वो गाय कैसी है, बेशक गायों में हमको शुबा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती कि जमीन जोते और ना खेती को पानी दे, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले अब आप ठीक बात लाए तो इसे जमा किया और जमा करते मालूम ना होते थे, और जब तुमने एक खून किया तो एक दूसरे पर इसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर करना जो तुम छुपाते थे। तो हमने फरमाया इस मकतूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह यूं ही मुर्दे जिलाएगा اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو. پیارے سائن بھائیو, اس پرانی واقعے سے ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوئی. ہم نے واقعہ سنا کہ گائے, قیمتی گائے, اس کا رنگ, پھر اس کے بارے میں معلومات کی گئی, یہ ساری باتیں. اب اس میں کیا کیا چیزیں پتا چلی کہ اللہ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی برکت ہوتی ہے. دیکھ لو کہ اس مرد سہلے نے, جو نیک آدمی تھا, اس نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی. خود نیک تھا, ایک ہی بچیا تھی, اور وہ بھی اللہ کے سپرد کر کے وفات پائی. مگر اللہ تعالی نے اس میں اتنی برکت ادا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی. سبحان اللہ, کتنی دولت ملی کہ چمڑے کے اندر, گائے کے چمڑے کے اندر بھر کر سونا دیا گیا. دوسری بات کہ جو شرعی احکامات ہوتے نا, اس کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. شرعی احکامات کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں نہیں مانتا, کس لیے ہوا, کس وجہ سے ہوا, تو شریعت کے معاملے کے اندر بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. یہ علماء کا میٹر ہے. کسی بھی حوالے سے اگر وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ہم عوام الناس کو کبھی بھی شرعی معاملات کے اندر بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مشقت اور مصیبتوں کے ذریعے آ جاتا ہے. بحث و مباحثہ مشقت اور مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے. غور فرمائیے کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, ایک گائے لو, اس کو ذبح کرو, اس کی زبان یا اس کی دم سے لاش کے اوپر مارو, لاش بول پڑے گی کہ میرا قاتل کون ہے. مگر کیا کیا کہ جن کو مشورہ دیا گیا تھا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ حدیث پاک میں کہ اگر بنی اسرائیل بیس نہ کرتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہی ان کے لیے کافی ہو جاتی. انہوں نے بحث کی, مباحثہ کیا, مگر ان لوگوں نے جب بحث شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو, کیسا رنگ ہو, کتنی عمر ہو, تو مصیبتوں میں پڑ گئے. الحمدللہ اس قرآن واقعے سے میں بہت ساری معلومات ہوئی. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر کبھی ایسے معاملات آئے تو عقل و شعور, ہوش و حواس کے ساتھ ہم فیصلے کیا کریں. جب ہم ہوش و حواس کے ساتھ, عقل و شعور کے ساتھ, دور اندیشی کے ساتھ جب فیصلے کریں گے, شریعت کے معاملے میں بحث نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں ہوگی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.
نصیحتیں ہیں ان میں, حکمتیں ہیں ان میں, عبرتیں